श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम में यहेजकेल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और महिमा। तो आइए श्रोताओ, इस बाइबल अध्ययन को आरंभ करने से पूर्व सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए आप तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज हमारे इस कार्यक्रम को पहली बार सुन रहे हैं। मैं आप सब की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से पुराने नियम की पुस्तकों में से यहेजकेल नबी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने इसके परिचय को देखा और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि यहेजकेल जो एक भविष्यद्वक्ता है किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों के बीच में वचन को बांटता है। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो इस समय आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन करने के लिए तैयार बैठे हैं, उसमें से सीखने और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब वे आपके वचन को सुने, निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, क्योंकि आप उनके जीवन के हर एक आवश्यकताओं को जानते हैं, उनके कमजोरियों और त्रुटियों को जानते हैं। आप उनकी सहायता करें और उनसे बोले और बातचीत करें। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आज के इस वचन के अध्ययन के द्वारा हम में से प्रत्येक जन अपने जीवन में आपकी शांति को ग्रहण कर सके। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, निराश और परेशान हैं। पिताजी, आप उन्हें भी अपनी शांति दे, उन्हें छुए और उन्हें भी चंगाई दे, ताकि प्रत्येक जन इस अध्ययन के द्वारा आपको समझने पाए, आपको जानने पाए कि आप जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं। आज भी आप हमसे बातचीत करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम देख रहे थे कि कबार नदी के तट पर डेरा डाले हुए बंदी इसराइली अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रो रहे थे। और यहेजकेल परमेश्वर को दर्शन में देख रहा था। जी हाँ, उसने उत्तर दिशा से बड़ी आंधी उठती हुई देखी, जिसमें प्रचंड आग थी और कुछ और भी था, जैसे झलकाया हुआ पीतल। वहां मनुष्य के स्वरूप का एक व्यक्ति भी था। तो आइए आज हम अपने अध्ययन की ओर आगे बढ़ते हैं और यहेजकेल की पुस्तक एक अध्याय और उसके चार पद को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। ध्यान दें, उत्तर दिशा से बड़ी आंधी आ रही है। इस पद में या इस पद के आधार पर अनेकों ने विचार प्रकट किया है कि उत्तर दिशा में कहीं रिक्त स्थान है और वह परमेश्वर की उपस्थिति का मार्ग है, परंतु हमारे आधुनिक दूरबीनों से पता चलता है कि वह रिक्त स्थान नहीं है। जी हाँ, वहां भी सितारे हैं, तथापि उत्तर दिशा धर्मशास्त्र में परमेश्वर के सिंहासन की द्योतक है। यशाया की पुस्तक 14 अध्याय उसके 13 पद में शैतान के पतन के संबंध में लिखा है, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारकगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मेरे विचार में उत्तरी ध्रुव की ओर देखने की अपेक्षा हमें ऊपर देखना है। परमेश्वर का सिंहासन ऊपर है, किसी दिशा से संबंधित नहीं है। उसका स्थान आपकी और मेरी समझ से परे है। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 28 पद में हमसे कहा गया है, सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। यही आज हमारे ध्यान केंद्र की दिशा है। मेरे मित्रों, भजन संहिता 75 उसके 5-7 पद में लिखा है, अपना सिंह बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। जिस दिशा का यहां उल्लेख नहीं किया गया है वह उत्तर दिशा है, और मैं तो कहूंगा कि विचार यहां ऊपर का है। परमेश्वर का सिंहासन अंतरिक्ष के पार है। मेरे प्रियो, उत्तर दिशा से उठने वाली यह बड़ी आंधी अतः परमेश्वर के महान कार्य अर्थात दंड का प्रतीक है। लिखा है, लहराती हुई आग घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल का सा कुछ दिखाई देता है। देखिए, यहां पहली बात तो जो देखने को मिलती है वह प्रकाश है, जो कुछ दिखता है और छिपाता भी नहीं है। यह प्रकाश सूर्य से अधिक तीव्र है, संभवतः अणुबम के विस्फोट के मध्य भाग के समान है। यह आग में तपकर चमकने वाली धातु का सा प्रकाश था। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय उसके 29 पद में लिखा है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। पहला योहना के पत्री 1 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है कि परमेश्वर ज्योति है। प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसके 13 पद में पौलुस ने दर्शन में देखा कि सूर्य से भी अधिक प्रचंड अग्नि स्वर्ग में उसे दिखाई दी। यह सब परमेश्वर की अगम्य उपस्थिति का वर्णन करता है। हम इसे भी पढ़ते हैं पद 13 और 14 में। आगे हम देखेंगे यहेजकेल की पुस्तक 1 अध्याय उसके 5 पद, यहां पर लिखा हुआ है, और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले, उनका रूप मनुष्य के समान था। यह पद और पद 26 जीवधारी अर्थात मनुष्य के समान यह प्रभु यीशु का देह धारण है, परमेश्वर के मनुष्य बनने का सत्य। जी हाँ, यूहन्ना कहता है 1 अध्याय उसके 14 पद में, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। यशाया के पुस्तक 52 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मनुष्य होकर पृथ्वी पर आया और इसराइल की धूल में चला फिरा और अंत में उसके पांव में कीले ठोंकी गई। हम यहेजकेल की पुस्तक 1 अध्याय उसके 10 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से, बाईं ओर के मुख बैल के से और चारों के पीछे के मुख उका पक्षी के से थे। ये चार चेहरे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय उसके 6 से 8 पद में व्यक्त प्राणियों के समान हमें 4 सुसमाचारों का स्मरण करवाते हैं, जिनमें प्रभु यीशु 4 पक्षों में दर्शाया गया है। जी हाँ, वह राजा है जिसे हम मत्ती सुसमाचार में पाते हैं, शेर उसका प्रतीक है, सेवक मरकुस रचित सुसमाचार में है जिसका प्रतीक बैल है, सिद्ध मनुष्य लूका रचित सुसमाचार में है जिसका प्रतीक मनुष्य का चेहरा है, उसका ईश्वरत्व यूहन्ना रचित सुसमाचार में पाते हैं जिसका प्रतीक उकाब है। ये 4 प्राणी अदन की वाटिका में जीवन के वृक्ष के रक्षक करुबों के वर्ण की तुलना में सदृश्य दिखाई देते हैं। वे मनुष्य को परमेश्वर के पास आने से रोकते नहीं हैं। वे तो मार्ग को खुला छोड़ रहे थे। आदम और हवा ने अदन की वाटिका से निकलते समय पीछे मुड़ करके देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया? उन्होंने उस घात किए हुए पशु को देखा जिसकी खाल के वस्त्र वे पहने हुए थे, और उन्होंने करुबों को देखा जो परमेश्वर के पास आने के मार्ग को सुरक्षित किए हुए थे। मनुष्य के पाप का प्रायश्चित करने वाला लहू है। मूसा ने दया आसन बनाए थे, तब उसके ऊपर करुब थे जो बलि के लहू को देखते थे। यही आदम और हवा ने भी देखा था। परमेश्वर के पास आने का एक ही उपाय है और वह है लहू। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 6 पद में प्रभु यीशु ने कहा है कि बिना उसके द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। यहेजकेल की पुस्तक 1 अध्याय उसके 12 पद में आगे लिखा हुआ है, वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे, जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे और चलते समय मुड़ते नहीं थे। परमेश्वर आज संसार में अपना उद्देश्य पूरी करने के लिए अटल दृढ़ संकल्प आगे बढ़ रहा है। उसे रोकने वाला कोई नहीं है। जी हाँ, उसे अपने मार्ग से हटाने वाला कोई नहीं है। यहेजकेल की पुस्तक 1 अध्याय उसके 13 और 14 पद में आगे लिखा है, जीवधारियों के रूप अंगारों और जलती हुई मशालों के समान दिखाई देते थे, और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती रही, और उस आग से बिजली निकलती थी। जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। ध्यान दीजिएगा कि उनका चलना फिरना बिजली का सा था। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 5 पद में धर्मशास्त्र कहता है कि परमेश्वर ज्योति है। यह परमेश्वर की महिमा का अद्भुत दर्शन है, परमेश्वर के व्यक्तित्व का दर्शन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 12 पद में प्रभु यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। इससे हमें क्या प्रकाशन प्राप्त होता है? इससे परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता प्रकट होती है। पहला योना की पत्री एक अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम प्रभु यीशु के लहू से उद्धार पाकर उसकी धार्मिकता में ढके ना हो तो परमेश्वर की पवित्रता हमें भस्म कर देगी। इस दर्शन में परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा है, उसका केवल प्रकाशन दिखाई दे रहा था। यह सच है कि किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा है। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय उसके 18 से 23 पद में मूसा ने कहा था, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने अपने आप को चट्टान की दरार में रखा, फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता है। जी हाँ, हम नहीं जानते कि परमेश्वर कैसा दिखता है। हम तो यह भी नहीं जानते हैं कि प्रभु यीशु कैसा दिखता था, परंतु मनुष्य के मन में परमेश्वर को देखने की एक लालसा बनी रहती है। मूर्तियां, जबकि परमेश्वर का रूप नहीं है, वे प्रकट करती हैं कि मनुष्य परमेश्वर को देखना चाहता है। तथापि परमेश्वर ने यही चुना कि मनुष्य को अपना चेहरा ना दिखाए। यहेजकेल की पुस्तक 1 अध्याय उसके 15 और 16 पद में लिखा हुआ है, जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। पहियों का रूप और बनावट फिरोजी की सी थी और चारों का एक ही रूप था और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। मेरे मित्रों, मैं फिर कहता हूं कि यह भविष्यवाणी पहिए के आविष्कार के वर्तमान तकनीकी युग की नहीं है। निसंदेह आरंभ में मनुष्य ने पेड़ के तने का एक टुकड़ा काटकर पहिए के समान उसे काम में लिया था। हमें पहिए के भीतर पहिए को समझने के लिए आगे पढ़ना होगा। आइए हम पढ़ें यहेजकेल 1 अध्याय उसका 18 पद। उन चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे और उनके घेरों में चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई थी। परमेश्वर के उद्देश्य बुद्धिमानी के होते हैं। हम जिस जगत में रहते हैं वह निरुद्देश्य और लक्ष्य रहित आगे नहीं बढ़ रहा है। परमेश्वर के पास उसके द्वारा रचे गए प्रत्येक अणु के लिए एक उद्देश्य है, एक योजना और एक कार्यक्रम है। हमारा जीवित रहना ही एक प्रमाण है कि हमें परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना है। परमेश्वर अति बुद्धिमानी से इस संसार में अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है। यहेजकेल की पुस्तक 1 अध्याय उसके 19 और 20 पद में हम पढ़ते हैं, जब जीवधारी चलते थे तब पहिए भी उनके साथ चलते थे और जब जीवधारी भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उठते थे। जिधर आत्मा जाना चाहती थी उधर ही वे जाते और पहिए जीवधारियों के साथ उठते थे क्योंकि उनकी आत्मा पहियों में थी। अब हमें अधिक स्पष्ट समझ में आता है कि ये पहिए परमेश्वर की अनंत क्रियाशीलता और ऊर्जा को प्रकट करता है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 18 पद में देखते हैं, प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया है। परमेश्वर कार्य कर रहा है और वह अपना उद्देश्य पूरा करेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय में हम यहेजकेल के दर्शन के सदृश चार प्राणियों को देखते हैं। जी हाँ, वे परमेश्वर के सिंहासन की रक्षा के निमित्त नियुक्त किए गए हैं। अपने इस सुरक्षा कार्य में वे दो काम करते हैं। पहला, वे सिंहासन की रक्षा करते हैं अर्थात वे पापी मनुष्य को परमेश्वर के सिंहासन के निकट नहीं आने देते हैं। दूसरा, वे परमेश्वर के निकट आने के लिए मनुष्य को मार्ग दर्शाते हैं। मुझे क्रूस के मार्ग से घर जाना है, करूब यह मार्ग प्रकट करते हैं। मेरे विचार में यहेजकेल ने इससे कहीं अधिक महान दर्शन देखा था। उसने संपूर्ण संसार के ऊपर करूबों को देखा था जो इस अकिंचन पृथ्वी पर दया बरसा रहे थे। किसी ने कहा है, मनुष्य एक साधारण से ग्रह पर एक दाना मात्र है, परंतु परमेश्वर ने प्रभु यीशु की मृत्यु के द्वारा इस संपूर्ण संसार को दया का आसन बना दिया है और वह आज इस संसार पर मंडराता है कि मसीह के नाम में आने वाले प्रत्येक पापी को वह अपना ले। यहेजकेल की पुस्तक एक अध्याय उसके 26 और 27 पद में हम पढ़ते हैं, जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी और उसके चारों ओर प्रकाश था। मेरे प्रियो, मैं इस आसमानी रंग में पीतल का सिंहासन देखता हूँ जो हीरे की तरह चमकता हुआ और इंद्रधनुष के रंगों का सा था। उस सिंहासन में मिसाइल के प्रक्षेपण की सी ऊर्जा थी और वह रथ के समान चल रहा था। वह पृथ्वी की ओर आ रहा था। मैं संसार के ऊपर करूबों को, क्रूस को, एक मेमने को और लहू को देखता हूँ। मैं दया का आसन देखता हूँ। प्रभु के पास दया है आपके लिए और मेरे लिए। रोमियो के पत्र 9 अध्याय उसके 15 पद में पौलुस लिखता है, वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। परमेश्वर इसराइल से ही नहीं संपूर्ण संसार से भी कहता है, तुम मेरे पास आ सकते हो। यहेजकेल की पुस्तक 1 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। यहेजकेल ने मूसा, दाऊद, यशाया और दानियल से अधिक देखा था। उसने परमेश्वर को तो नहीं परंतु उसकी महिमा को देखा। परमेश्वर की उपस्थिति वहां थी। प्रभु यीशु ने इस संसार में हमारी मानवता, हमारे रूप को धारण किया, अतः उसकी महिमा दिखती नहीं थी। यहेजकेल ने परमेश्वर की महिमा देखी थी। लिखा है, उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। जी हां, इस दर्शन का प्रभाव यहेजकेल पर अत्यधिक क्लांतकारी था। हम पर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ना चाहिए। हे प्रभु, मैं नाश हुआ, मैं भटक गया हूं, मुझे तेरी आवश्यकता है, मैं तेरी ओर फिरकर तुझे ग्रहण करना चाहता हूं, आप मेरी सहायता करें। जब हम प्रभु से मांगते हैं तो परमेश्वर मुझ पर और आप पर भी अनुग्रह करता है। संपूर्ण पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आकर मनुष्य मुंह के बल गिर जाता था। यशाया के साथ भी ऐसा ही हुआ था। यशाया के पुस्तक 6 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। परमेश्वर की उपस्थिति में वह मुंह के बल गिरा हुआ था। दानियल के साथ भी ऐसा ही हुआ था। पत्मोस द्वीप पर यूहन्ना के साथ भी ऐसा ही हुआ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1:17 में हम पढ़ते हैं, जब मैंने उसको देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हमारे पवित्र परमेश्वर का यह कैसा चित्रण है। मैं तो कहूंगा कि मैं सिरे पर खड़ा हूं और अति आभारी हूं कि मैं चट्टान की दरार में छिपा हूं। एक दिन अवश्य मैं अपने उद्धारकर्ता के चेहरे को निहारूंगा। मैं नहीं जानता कि वह कैसा दिखता है, परंतु मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूं कि मैं उसे देखूं, और इसके लिए मुझे आज से तैयार रहना है, तैयारी करना है, ताकि हम अपने परमेश्वर से मिल सकें, देख सकें। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने यहेजकेल के दर्शन की बातों को देखा है और सीखा है, और आपने इस बात को जाना है कि परमेश्वर को कोई भी नहीं देख सकता, परंतु यहेजकेल ने परमेश्वर की महिमा को देखा। आइए आज हम इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें और अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानकर उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, और निश्चय जाने कि वह आपसे प्रेम करता है, वह आपके पापों को क्षमा करेगा और अपने निकटता में आपको आने देगा। प्रभु आज के इस अध्ययन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के।